प्रथा बनाई रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आदत देने के कई प्रकार हैं। जैसे यहां पर जैसे रानियों ने अपने परम प्रियतम पति को देखा, भगवान श्री कृष्ण को महल में प्रवेश करते हुए देखा, वो सारा अपना काम का छोड़कर उठ खड़े हुए। उठकर खड़े होना ये भी किसी व्यक्ति को आदत का एक मार्ग है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब भी भगवान के पट खुलते हैं विशेषतः लोग बैठे हुए तो उठ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्रेष्ठतम यज्ञ है कि जिनको हम यथोचित आदर देना चाहिए। भगवान के भक्तों के हर एक कार्य से हम ये सीख ले सकते हैं, शिक्षा प्राप्त हो सकती है। और देखते हैं कि जब भावनाओं का अतिरेक हो जाता है तो आंसुओं को हम रोक नहीं पाते, चाहे वो दुख की भावना हो या चाहे सुख की भावना, आंखों में से आंसू टपक ही आते हैं। इसलिए भक्त कहा करते थे कि भगवान के लिए जो रोया वो सब कुछ पाया, और जो केवल हंसते ही रहा वो इस दुनिया में हंसते रहा। कि जब तक भगवान के लिए हम रोते नहीं है तब तक हमारी भावना जो है वो प्रगाढ़ नहीं होती है, चाहे सुख की हो या भगवान के विरह की हो, उनके मिलाप की हो या विरह की हो, वो तीव्र नहीं होती। इसलिए जब भुवनेश्वर का मंदिर उद्घाटन हुआ तो परम पूज्य गौरवमणि महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया था, उसमें वे बता रहे थे We have now opened a crying institute where you can come and cry aloud for the mercy of Krishna, for the mercy of Lord Gauranga, Lord Nityananda. They are the most beneficent and merciful personalities. If you cry out loudly, definitely they will save you. So we welcome all of you to this newly opened crying institute. तो मंदिर वे कह रहे थे कि एक रोने की संस्था है, हमने जो नया मंदिर बनाया है एक नया रोने की संस्था कि जहां पर आकर आप रो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु और आपके अश्रु पूर्ण नेत्र उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस नए रुदन संस्था में कि जहां पर आकर आप रोज वैसे पहला ऐसे लेकर मृत्यु तक रोना ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो रोया नहीं है, क्योंकि हर जीवात्मा चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो जब वो अपने माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य कौन सा करता है, और रोया नहीं तो जबरदस्ती रुलाते हैं उसको। और विशेष करके हम वैदिक पद्धति में देखते हैं कि जब किसी कार्य की शुरुआत हम करने जाते हैं तो सोचते हैं कि अच्छे काम से हो ताकि वही दिन भर चलता रहे। इसलिए सुबह सुबह उठ के हम सोचाते हैं कि भगवान के दर्शन करें, भगवान के भक्तों की संग करें या भगवान का नाम सुने ताकि दिन भर वही चलता रहे। कई बार नया साल शुरू होता है तो लोग प्रण लेते कि आज से ये मुझे करना है ताकि वही अच्छी चीज हो पूरा साल भर करता रहे। यानी लोगों की यह समझ है कि कुछ जो काम है हम शुरू कर रहे हैं दिन के प्रारंभ में या मास के प्रारंभ में या वर्ष के प्रारंभ में वही होता रहता है। तो जीवन की शुरुआत में हमने क्या किया, रोए तो जिंदगी में क्या करने वाला है, किसके लिए रोना है, करने के लिए शास्त्र बताता है। कौन सा रोना उचित है? भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए रोना ही हमें असली सुख प्रदान करता है। भाई आश्रमों में भी अंतर है, सुख के आंसू जो रहते हैं या आनंद के जो आंसू रहते हैं वे मीठे और ठंडे रहते हैं, और दुख के और अनुतप्तता के जो आंसू रहते हैं वे खट्टे और गर्म रहते हैं। ये जान सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है जब करते समय आंखों में से आंसू आ रहे हैं, आप आंसू आ रहे होते क्योंकि आंखें लाल हो गई होगी, नींद आ रही होगी, तो आपके पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो टेस्ट करके देख लो आंसू भाव ना के व्यतिरिक्त के है या शारीरिक दर्द के है। कि रोना तो है और भगवान के भक्त जो है जैसे नौतम दस कान दिया कान दिया रो रहा हूं, किसके लिए? भगवान के भक्तों का सुनो प्राप्त करने का। भक्ति विनोद ठाकुर के कई गीत है जो इसी शब्द से समाप्त होता है, कांदिया कांदिया कि भगवान मैं रो रहा हूं इसलिए आपके भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, इसलिए आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं है। इसलिए रोना यानी किसी चीज को प्राप्त करने की जो तीव्रता है उसको प्रदर्शित करना, अन्यथा व्यक्ति रोता नहीं। तभी रोता है जब किसी चीज को प्राप्त करना है और उसका व्यतिरोध हो जाता है, तो उसके लिए वो रोता है। यहां पे वैसा ही वर्णन आता है कि वे इतनी उत्कंठ थी भगवान को आलिंगन करने के लिए, सामाजिक रूप से तो तुरंत संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मन में भगवान को प्रगाढ़। तत्पश्चात अपने पुत्रों को आगे भेज दिया। प्रभुपाद हमें बताते कि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है और पुत्र द्वारा आलिंगन पति द्वारा काम कामना की दृष्टि से किए जाने वाला आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन असल दृष्टि से तृप्तिदायक होता है, तृप्ति प्रदान करने वाला। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को ही आगे भेज दिया। गलत ट्रांसलेशन किया है। यह आलिंगन जो आसक्ति है या प्रेम का जो आकर्षण है उसको तृप्तिदायक करने वाला है। उन्होंने यहाँ पे वात्सल्य दृष्टि किया है, अफेक्शन इट्स नॉट अ पैरेंट लव एक्सचेंज बिटवीन टू लवर्स। और माधुर्य रस में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावपूर्ण होता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के आंखों में नहीं देखना, फंस जाता है, और खास करके ब्रह्मचारी को। शास्त्र में वर्णित आता है, वर्णन आता है कि उनका सामर्थ्य इतना बलवान रहता है कि कोई आंखों में देख ले उनके तो अपने हृदय को बना बैठता है। विशेष करके प्रभुपाद तृतीय स्कंध के तीसरा अध्याय के तात्पर्य बताते हैं, जहां पे कपिल मुनि अपनी माता को वर्णन करते हैं कि बलम पश्यमे मायया त्रिमयो स्त्रीमयो चैव दिशा या करोति पादाभ्रांत भू विजृंभेति, कि हे माता अगर तुम मेरे माया का असली पल देखना चाहती हो तो मैंने बनाई हुई स्त्री को देखो। कि जो केवल अपने प्रॉपर्टियों के हिलाने से बड़े बड़े सारों राजाओं को भी बाधा क्रांत कर रही थी। इसलिए विशेष करके बताया जाता है कि उनकी आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखना, क्योंकि उससे व्यक्ति के मन में काम भावना बहुत प्रेरित हो जाती है। एक्चुअली इसी अध्याय में वर्णन आता है कि जब भगवान छत्तीसवां श्लोक है, इसमें वर्णन किया है कि केवल भगवान ही है जो ऐसे व्यतिरिक्त को रोक सकते हैं, सहन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं सकते। उद्दाम भावा पिशुनाम मल्ग उल्ग हासा दृढ़ावलोकन अहितो मदनोपिहासा संभूय चापम अजहात प्रमादो तमास्ता यसेन्द्रियम विमुखितम कुहकैर नश्येषुको। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा पाकी चितवन के अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव मोहित हो करके अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यहां तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी अपने समस्त हावभाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को वे विचलित न कर सके। तात्पर्य प्रभुपाद यहां बताते हैं, ये तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोक्ष पद या भगवत धाम जाने का पद सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और पूर्ण सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म स्त्री की संगति के लिए मना करता है या प्रतिबंध लगाता है। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु शिव जी को जीत सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है कि संसारी काम वासना को उत्कीर्ण करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर इधर उधर विचरण कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उद्दीपन की यही शैली है। जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, क्यों यौन संबंध के द्वारा जीव भौतिक बंधन में बन जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस तरह नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग भगवत धाम जाने के लिए मोक्ष पथ पर है, उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण से आकर्षण के साज सामानों से बचे रहे। ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों का अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या नहीं। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों के कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है, तो परम पूर्ण सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। शिव जी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता कामदेव के पान द्वारा आहत हुए क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और अपनी हार मान ली। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हावभाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण छूट गए थे। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए। इसका कारण यह है कि वे पूर्ण आत्मा राम, उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए राणिया अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न कर पाकर अपने एकनिष्ठ प्यार तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सके। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेम भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ आचरण किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी व्रत पति की भांति प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने से क्या मिलने वाला था। वे हर एक के स्वामी है, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए, यह नितांत दिव्य है। राणिया भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य तथा, क्योंकि वे अपने भाव को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोकों में यही बात बताई जा चुका है कि भगवान संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। तो भगवान जितेंद्रिय है, उनकी इंद्रिया किसी भी चीज के कारण विचलित नहीं हो सकती। सोचिए जिनका नाम लेने से विचलित होना रहा जीवात्मा भी जितेंद्रिय बन जाता है, तो क्या वे भगवान विचलित हो सकते किसी चीज से? उनको सिर्फ विचलित एक चीज करती है और वो है उनके भक्तों की उनके प्रति जो दुर्लभ उत्कंठा रहती है। अपने भक्तों के लिए वे विचलित हो जाते हैं। जैसे महाभारत में हम देखते हैं, जिस दिन दुर्योधन आके भीष्म देव को उकसाता है, बोलता है आप तो पार्षद में क्या कहेंगे, पक्षपाती है, आपको मानवों के प्रति बहुत स्नेह है, इसलिए हालांकि आप मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हो लेकिन अब साथ दे रहे पांडव आपके लिए क्या कठिन है? आप परशुराम जैसे महान योद्धा को युद्ध में हरा सकते हो, तो पांडव आपके सामने क्या है? लेकिन उनके प्रति जो आपके मन में गाढ़ प्रेम है, उस प्रेम के कारण आप उनको मारना नहीं चाहते। आप केवल एक अभिनय कर रहे हो मेरे साथ युद्ध करने का या मेरे पक्ष में रहने का, लेकिन आप साथ दे रहे हो पांडव और आप नमक राम हो, आप सिंहासन के राजगद्दी के विरोध। जब ये भीष्म पितामह सुन लेते हैं तो उनकी निष्ठा में बहुत बड़ी चोट पहुंच जाती है। कहते कि उस राज निष्ठा के लिए तो मैंने ये व्रत धारण किया है और तुम्हारे पक्ष में मैं लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा हूं या धृतराष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूं हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए, क्योंकि मैंने व्रत धारण किया है कि जो भी कोई इसका राजा बनेगा उसके मैं रक्षा करूंगा। और रही बात युद्ध की, तुम चाहते हो तो मैं कल पूरे पांडवों का नाश करूंगा। ये रहे पांचवा, अपने तर्कश में से पांच बार निकालते हैं और बोलते यही पांच बार है जिनसे कल पांच पांडवों की मृत्यु होगी। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाता है, दुर्योधन पूछता है भीष्म ने अभी प्रतिज्ञा की है, भीष्म वाक्य है ना, भीष्म वाक्य अटल है, अचल है, बदल नहीं सकता। अन्य बहुत प्रसन्न हो गया, फिर भी इतना कुटिल था वह, फिर मैं उनमें पूछे थे उसके, कहीं मांग लो दोनों मिले करके, लाओ मांग ले तो कर मैं आपको दे देता हूं करके मांग लेके चला गया। और उसी समय पांडवों के मचान के, पांडवों के क्या बोलते उसको, शिविर, हम पांडवों के शिविर में अर्जुन खर्राटे मारते हुए सो रहे और द्वारकाधीश अपने हाथ पे हाथ मारते हुए, पीठ पे हाथ लगाते हुए गहरी सोच में अपने तंबू में घूम रहे, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से, बहुत विचलित हुए। वैसे ही निकल आया और अर्जुन के तंबू में चले और देखा तो अर्जुन आराम से सोए, अर्जुन को है, अर्जुन क्या कर रहा है, नींद से उठकर भी सो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बोले कैसे सो रहे हो, मालूम है तुम्हें भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल 5 पांडवों को मारे और सबसे पहला पांडव तुम रहोगे मरने वाला, तो क्या हुआ। अर्जुन पूछता तुम्हारी इच्छा तो कल मैं मर रहा हूं, तुम नहीं चाहते तो नहीं मरोगे, मैं क्यों चिंता करूं, फिर सो गए और उठो और जाओ विष्णुदेव के पास, जाते विष्णु के पास और विष्णु से 5 पान सॉरी दुर्योधन के पास जाओ और दुर्योधन से जाके कुछ मांगो, बोले उससे जाके क्या मांगो, तो बोले उसके पास 5 बाण है वो मांग के लेके आओ, बाकी कुछ बताते ना उसको। और अर्जुन ने भी बोला होता है कि करिष्य वचनम करो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। रात में उठ जाता है, घोड़े पे बैठता है, सीधा दुर्योधन के शिविर में पहुंचाता है, दुर्योधन को बोलता है कि भाई कुछ मांगने आ जाए, दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाता है, बोलता देखो तुम चाहते हो मैं युद्ध बंद कर देता हूं, यही मांगने आया। अर्जुन बोलता है नहीं, मैं एक ऐसी चीज मांगने आया हूं जो देने के लिए तुम्हें कठिन है, लेकिन तुमने मुझे एक बार वचन दिया था कि जो मैं मांगू वो तुम दो, तो आज वो समय है, मैं मांग रहा हूं मुझे दे दोगे, बताया ठीक है मेरे प्राण भी मांगो, दे दूंगा मांगो, तुम्हारे प्राण को वैसे ही जाने वाले, लेकिन मैं क्या करूं, वो 5 प्राण दे, जैसे दुर्योधन सुन लेता है उसकी आंखें घूमने लगती है, बोले इसको कैसे मालूम 5 बाणों के बारे में, मैं तो अभी भीष्मदेव के शिविर से आया हूं और इतने जल्दी वे भी संदेश नहीं भेज सकते इसको, तो इसको कैसे मालूम पड़ा है 5 बाणों के बारे में। अभी बड़ा हृदय करके उसने बोला रहता है, वचन दिया होता है कि भाई दे देता हूं, तो दे देता है 5। अर्जुन 5 बाण लेके वापस आते भगवान के पास और भगवान उन बाणों को निस्तेज कर देते क्योंकि वह अभिमंत्रित बाण रहते थे, तो भगवान अपने शक्ति के द्वारा उनको निस्तेज कर देते, सामान्य बाण बना देते। फिर प्रातः काल में भीष्मदेव तैयार हो जाते और जैसे अपने शिविर के बाहर निकलते हैं तो एक स्त्री आके उनके चरणों में स्पर्श करे, तो बिना देखे हाथ ऊपर करके सौभाग्यवती भाव करके आशीर्वाद देते उसको, और फिर नीचे देखते तो उसकी अपना घूंघट उठाते तो कौन होती द्रौपदी, और भीष्म में सोच लेते इसको तो मैंने आज सौभाग्यवती भव कहा, तो मैं आज कैसे इसके पतियों को मार सकता हूं, सम्मान। और अपने रथ के पास आने के बाद तो अपने सेवक को बोलते कि दुर्योधन के पास 5 बाण रखे हुए, बोले क्या, तो दुर्योधन स्वयं आता है अपना सिर झुकाए बोले और कहता है कि पिता को माफ कीजिए वो बाण मेरे पास नहीं है, तो बोले मूर्ख हो क्या, मैंने तुम्हारी रक्षा में रखे थे, कहां गए, बोले कल रात अर्जुन आया था लेके गया, तो भीष्म ने मन ही मन में कितने मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि हे वासुदेव क्या तुम्हारी लीला है। लेकिन ऊपर से क्रोध प्रकट करते हैं, ठीक है मैं जानता हूं ये सब कार्य किसका है, ये उसी वासुदेव कृष्ण का कार्य है। उसने वचन दिया है कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। आज या तो मेरे वचन की रक्षा होगी या उनके वचन को खंडन होगा। आज ऐसा युद्ध होगा न भूत में और न भविष्य में इस प्रकार का युद्ध हुआ, और बस पितामह भीष्म उस दिन बाणों की ऐसी बरसात करते हैं, मानो मृत्यु साक्षात मृत्यु मुंह फैला रहे पूरी पांडव सेना को जड़मृत कर रहा है, खाते जा खाते जा खाते जा, कोई रोक नहीं पा रहा। फिर भगवान अर्जुन का रथ लेकर उनके सामने आ गया, जैसे ही आते हैं भीष्म टूट पड़ते हैं उनके ऊपर, पलकों की चपक में ही कई सैकड़ों हजारों खान निकलना शुरू हो जाते हैं, अर्जुन भी विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति आती है कि समझो अभी कुछ क्षणों में अर्जुन का अंत होने ही वाला है, और उसी समय वही जो आत्मकाम आत्माराम जिनको कहा जाता है, जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होते, वो इतने अस्वस्थ हो जाते इतने विचलित हो जाते कि छोड़ देते लगा कूद पड़ते रथ से। और भागवत में स्वयं भीष्म ने वर्णन करते हैं कि उस समय मेरे भगवान मेरे ओर ऐसे आ रहे थे जैसा कोई मृगेंद्र किसी मृग के प्रति हमला करने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि जब कोई बालक क्रोधित हो जाता है और किसी को मारना चाहता है तो क्या करता है, इधर उधर देखता है, कुछ मिलता है और जो मिले सो फेंक देगा। तो भगवान ने पितामह भीष्म देव की ओर जब मारने के लिए दौड़ रहे थे तूफान की तरह, तो यहां देख रहे थे कुछ मिलता है कि हाथ में था कि फेंक के मारो करके, तो क्या मिला उनको, टूटे हुए रथ का पहिया मिला। उस चक्र को हाथ में लिए जोर से दौड़ने लगे भीष्म देव की ओर, और भीष्म देव ने जब भगवान को सुंदर मनोहारी रूप देखा तो अपने धनुष और बाण को त्याग दिया, दोनों हाथ फैला दिए और प्रार्थना करने लगे भगवान को कि आज मेरे जीवन की पूर्णता, आओ केशव आओ भेद डालो इस शरीर को नष्ट कर शरीर। और उसी समय अर्जुन दौड़ते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ भगवान को खींचने लगा, नहीं कृष्ण नहीं, आपने तो वचन लिया कि आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप ये क्या कर रहे। और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध समाप्ति का शब्द, तो सबके वचनों की रक्षा हो। भगवान ने भी अर्जुन को बोला था, अर्जुन की वचन बोला था कि अर्जुन तुम बता कि न मैं भक्ता प्रश्न मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात उनके इसमें बताते हैं टीका भगवत सारा वर्षणी में कि भगवान वहां पे जब ये श्लोक बोलते हैं तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन दुंधुभी और नगर लेकर तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। तो अर्जुन बोलते तुम बोल दो ना, तुम क्या प्रॉब्लम है, तो बोले मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं मेरे वचनों का कभी पालन नहीं करता, लेकिन मेरे भक्त जब वचन देते हैं ना तो मैं पालन कर देता हूँ, और भविष्य में वही होने वाला है कि भीष्मदेव के साथ जब तुम्हारा युद्ध होगा तो मुझे हालांकि मैंने वचन लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम बोलो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। भीष्मदेव ने वचन लिया था तो अर्जुन मरेगा या कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में भगवान चाहते थे कि मेरे भक्तों के शब्द बने रहे, इसलिए उन्होंने भीष्म की भी इच्छा पूरी कर दी और अर्जुन का भी वचन की पूर्ति की। और इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है कि जो अपने भक्तों के लिए किसी भी प्रकार की स्थिति स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। कई बार भगवान नरसिंह को स्तंभ में से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। हम बोलते ना कि बही नरसिंह 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 पर सब जगह पे, तो फिर स्तंभ में से ही क्यों निकले? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा कि इसमें है, तो प्रहलाद महाराज के वचन पूर्ति के लिए वहां से बाहर निकले। तो भगवान अपने भक्तों से इतना गाढ़ा प्रेम करते हैं क्योंकि उनके भक्तों को उससे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। यहां देखते हैं कि स्त्रियों इतना प्रेम का भगवान के प्रति उनको कि उस प्रेम के व्यतिरिक्त के कारण वो अपने आश्रम को नहीं रोक पाए, उनकी आंखों में से अश्रु कहते हैं कि अश्रु छलकने लगे। और महाप्रभु की लीला में हम कई बार देखते हैं, जब भी महाप्रभु मां जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो ऐसा लगता था भगवान के प्रेम में भाव विभोर होके वे अपने आश्रम को भोग नहीं पाते थे। और महाप्रभु के आश्रम ऐसे थे जैसे शूटिंग में था, एक सुंदर तैल चित्र है जिसमें दिखाया महाप्रभु जब रथ के सामने नृत्य कर रहे थे तो उनके आंखों में से जो अश्रु धारा बह रही होती, एक भक्त ऐसे अपने अंजलि में पकड़ लेता है उसको और उसको पी लेता। जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे तो वर्णन आता है कि पानी से ज्यादा अश्रुओं से इसको साफ कर लेते, तो आंखों में अश्रु तब निकलते जब प्रेम का अतिरेक होता है। जो रोया सो पाया, इसलिए ब्रज के भी लोग देखिए कभी भगवान के बारे में कुछ लीला बताते तो उनकी आंखों में से सहज पानी निकल आता, क्योंकि उतना प्रेम है भगवान के। और वो प्रेम तभी व्यक्त हो सकता है जब आपका हृदय उतना सौम्य सरल मृदु हो, क्योंकि मृदु हृदय ही इन भावनाओं को दे सकता है। और इसलिए भक्त कहते हैं कि मैं अपने हृदय को नवनीत के समान मृदु बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे स्वामी जो है वो नवनीत चोर है, ताकि मेरे इस मृदु नवनीत समान के लिए वोट जा सके और उस हृदय को ऐसा मृदु बनाने के लिए महाप्रभु ने विधि दी है। कैसे बना सकते हो? तृणा अमान इन चार चीजों से उसको बना सकते, नम्रता से दीनता, दैन्य, दया, अन्य मान और प्रतिष्ठा, इन चारों गुणों से इस हृदय को हम कोमल बना सकते। और वही कोमल शरीर ही, वही कोमल मन हृदय की भावना ही भगवान के प्रेम को आकर्षित कर सकते। गौरवानंद महाराज कहा करते थे कि हमारे प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु ये सिंह के समान, और किसी सिंह का अगर दूध निकालना है तो उसके लिए पात्र भी सही चाहिए ना, उचित पात्र चाहिए। क्योंकि साधारण जल अगर आप किसी गड्ढे में डाल देते हैं मिट्टी के, तो रुक जाता है। लेकिन किसी मिट्टी के बर्तन में अगर आप शेर का दूध रखेंगे तो निकल जाता है, झर जाता है उसमें से। तो कहते हैं कि इस पात्र को मजबूत बनाना है ताकि हम उस चैतन्य सिंह का दूध ले सके, प्रेम रस जो है उसे इकट्ठा कर सके। और कैसे बना सकते इस पात्र को मजबूत, तो बोलते हैं उसी सिंह ने हमें एक ही दी और वह उनकी शिक्षा चेत हो रहा। भगवत नाम ले लेकर इस चित्त का मार्जन करें। और इस चित्त को मजबूत कैसे बनाए, तो इस प्रणाली इस श्लोक को अपने गले का हार बनाए, इसे कंठित कर दे, कंठस्थ कर दे, उससे ही हृदय परिवर्तन होगा। और फिर महापुरुष जो हमें देने आया है उसे हम लेने के लिए पात्र बन जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। टीका कितनी श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।